الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایمان والوں پر، مسلمانوں پر ایک ایسا فریضہ ہے، فرض ہے، جو ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے. یعنی نماز پڑھنا بھی فرض ہے اور نماز کو وقت میں ادا کرنا بھی فرض ہے. کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن جب عذر نہ ہو تو پھر ٹائم پر اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہوتی ہے. اس نماز کو حق تعالی شانہ نے بہت ہی اہتمام اور بہت ہی اعزاز کے ساتھ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر عطا فرمایا. بہت سے احکام زمین پر نازل ہوئے. روزہ زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، حج زمین پر فرض ہوا، لیکن نماز آسمانوں پر فرض ہوئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت. اپنے پاس بلا کر دیا. جب کوئی آدمی اپنے کسی محبوب دوست کو بلاتا ہے تو بہت ہی اعزاز اور اکرام کے ساتھ بلاتا ہے، اور بلانے کے ساتھ اس کا اکرام بھی کرتا ہے. جب واپسی ہوتی ہے تو اس کو گفٹ اور تحفہ بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت ہی اعزاز کے ساتھ آسمانوں پر بلایا، آسمانوں سے اوپر بلایا، ایسی سواری عطا فرمائی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی. بڑے بڑے راکٹ بن گئے، ہوائی جہاز بن گئے، کومکورڈ بن گیا، اور نہ معلوم کیا کیا بن گیا، مگر جو سواری اللہ تعالیٰ نے براق کی شکل میں اپنے محبوب کو عطا فرمائے وہ آج تک کسی کو نہیں ملی. اور تین فرشتے لینے کے لیے آئے، جن میں حضرت جبرائیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم بھی تھے. بہرحال اس بات کو بیان نہیں کرنا، بیان یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر نماز عطا فرمائی. اس لیے نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان کو بہر صورت ادا کرنا چاہیے، کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہیے. وقت پر اس فرض کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اس نماز کی ادائیگی میں مسلمانوں کے تین درجات ہیں. آج ہی تین درجات بیان کرنا مقصود ہے کہ مسلمان نماز کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں وہ تین طرح کا معاملہ ہے، یا اس اعتبار سے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تین طرح کے مسلمان ہیں. پہلا درجہ، ادنا سے ادنا، کم سے کم درجے کا مسلمان کیا ہے؟ جو صرف پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، اور جب فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تب آتا ہے، اور جہاں سلام پھرا وہیں سے روانہ ہو جاتا ہے اسی وقت. نہ پہلے کی سنت کا اہتمام کرتا ہے، نہ بعد کی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے. یہ کم سے کم درجے کا مسلمان ہے. نماز تو ادا ہو گئی، فرض ذمے سے ساقط ہو گیا، لیکن ابھی بہت کچھ اس کو کرنا چاہیے جو نہیں کر رہا ہے. یہ کم سے کم درجے کا مسلمان. جیسے بہت سے نوجوان دیکھے گئے آتے ہیں آخری وقت میں کہ امام کب تکبیر کہے، کب تکبیر تحریمہ کہے، تب مسجد میں داخل ہوں. اور بعض تو اس پر اور ظلم کرتے ہیں، تکبیر کے بعد داخل ہوں گے پھر کہاں جائیں گے؟ بیت الخلاء میں جائیں گے، واش روم میں جائیں گے، وہاں فارغ ہوں گے، آدھی منٹ میں وہ کام بھی پورا کر لیتے اتنی جلدی، اور پھر وضو کریں گے، وضو کر کے ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि लॉकडाउन हुआ तो वॉशरूम का भी लॉकडाउन हो गया। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। बरसों से हदीस सुनाते हैं कि भाई जो आदमी अपने घर से वुजू करके आए उसको हर कदम पर नेकियों का सवाब मिलता है, मगर मस्जिद के बाजू में रहने वाला इंसान भी मस्जिद के बैतुल खला का और वॉशरूम का ऐसा आदि बन गया कि उसको घर में टॉयलेट नहीं होती, वो मस्जिद में आकर ही होगी, उसी को गंदा करना जानता है। पूरी दुनिया का मिजाज बिगड़ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबे किराम के दौर में मस्जिद नबवी में कहीं बैतुल खला नहीं थे। अपने अपने घरों से वुजू करके इस्तिंजा से फारिग होकर आते थे। मस्जिद इसका नाम है। आदमी बाअदब आए, घर से सारी ज़रूरतें पूरी करके आए, कोई माजूर हो अलग बात है और माजूर कम ही होते हैं। तो सबसे कम दर्जा यह है कि आदमी मुसलमान का कि बस वक्त पर आया, नमाज पढ़ी और फिर रवाना हो गया। अब इससे अंदाज लगाओ कि इससे जो कम दर्जा है कि कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा है, कोई कभी कभार पढ़ ली वरना कोई परवाह नहीं है, तो मुसलमान के कौन से दर्जे पर आएगा अल्लाह ही बेहतर जाने। हदीस शरीफ में फरमाया कि हमारे और काफिर के दरमियान, मुसलमान और काफिर के दरमियान में फ़र्क अगर है तो नमाज ही का है। नमाज पढ़ रहा है मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ रहा है समझो मुसलमान नहीं है। बहुत बड़ी वाइद है तर्क सलाह पर, नमाज के छोड़ने पर। अल्लाह हर हर मुसलमान को तौफीक अता फरमा। अगर पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाले मस्जिद के नमाजी सब बन जाएं, तो लेस्टर में जितनी मस्जिदें बनी ये भी कम पड़ जाएं और मसाजिद बनाने की ज़रूरत पेश आ जाए। लेकिन कहाँ, कितना फ़ीसद आदमी नमाज पढ़ता है देख लिया जाए। उससे ऊपर का दर्जा मुसलमानों का वो है जो फ़राइज़ के साथ साथ सुन्नतों का अहतमाम करता है। नमाज से पहले की सुन्नतें, नमाज के बाद की सुन्नतें, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पहले मस्जिद में आता है और आकर इत्मीनान से सुन्नतें पढ़ता है। सुन्नत पढ़कर इंतज़ार करता है जब जमात खड़ी हो, शरीक होता है। जमात के बाद की सुन्नत हो या दुआ हो उसमें शरीक होता है और फिर जाता है। हदीस शरीफ में आता है, मन वादब आला इसनत आशरा रक आतन, जो आदमी 12 रकात सुन्नत का अहतमाम करता है अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल देते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। जाने से पहले खुले होंगे कि देखो ये आया हमारा वो बंदा जो मस्जिद में आकर पहले से पहुंचता है, सुन्नतों का अहतमाम, बाद की सुन्नतों का अहतमाम करता है, तो बड़ी फजीलत। बाद रिवायत में वजबत लहुल जन्ना, जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई, फर्ज भी अदा कर रहा है, सुन्नतों का भी अहतमाम कर रहा है। उलमा ने इसको सुनन रवातिब कहा है, यानी ऐसी सुन्नतें जो मुअक्कद हैं जिनका अहतमाम करना चाहिए। कायदा यह है कि जब आदमी वक्त से पहले पहुंचता है और सुन्नतों का अहतमाम करता है तो आदमी दुनिया के मशागिल से ज़रा एक तरफ को हो जाता है, फिर जो फर्ज अदा करता है वो इत्मीनान से सुकून के साथ ध्यान के साथ पढ़ता है। आधा सुकून अगर सुन्नत में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन फर्ज उसकी अहतमाम से अदा होती है, तो अहतमाम करना चाहिए। ये दूसरे नंबर का मुसलमान है, उससे पहले से आला हो गया। और उससे आला मुसलमान वो है जो फराइज को भी अदा करे, सुनन को भी अदा करे, और उसके अलावा मुख्तलिफ अवकात के जो मामूलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए और जिनको अदा करने की बड़ी फजीलतें बताई गई हैं, उनका भी अहतमाम करें। तुलू आफ्ताब के कुछ देर के बाद सलात उज़ुहा, जिसको चाश्त की नमाज कही गई, जिसको इशराक की नमाज कही गई, उनका अहतमाम करना। हदीस शरीफ में आता है जब आदमी सुबह करता है तो उसके 360 जोड़ हैं जिस्म में, हर जोड़ के जिम्मे एक सदका वाजिब हो जाता है। तो सहाबे किराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, हम में से किसके पास ताकत है कि रोज़ाना 307 सदका दे? तो फरमाया कि कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना एक सदका है, सुभान अल्लाह पढ़ना सदका है, किसी बुराई को हटा देना सदका है, किसी को अच्छी बात बता देना सदका है। और अगर कोई आदमी 2 रकात नमाज पढ़ लेता है और दो का इजाफा कर ले तो तमाम सदक़े का पूरा सवाब उसको मिल जाता है। बड़ी फजीलत। जो लोग कारोबार करते हैं और मुलाजमत करते हैं वो अगर इस नमाज को एहतमाम के साथ अदा करते हैं तो उलमा लिखते हैं तजुर्बे की बात यह है कि रिस्क में उसके ज़रिए से और तिजारत में बरकत होती है। गोया काम शुरू कर रहा है अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह से मांग कर, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर। तो ये चाश की नमाज, इशराक की नमाज, उसके बाद मगरिब के बाद 6 रकात अवाबीन की नमाज, रात को अल्लाह तौफीक दे अवाबीन की नमाज, इन नमाजों की बड़ी फजीलतें आई हैं, दर्जात हैं। हदीस शरीफ में आता है अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबबतु, मेरा बंदा मुझसे क़ुर्ब हासिल करता है नवाफिल के ज़रिए, नफिल पढ़ता है, नफिल पढ़ता है अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है, अल्लाह का क़ुर्ब पैदा होता है, हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। फरमाते जब मैं मोहब्बत करता हूँ जिब्राइल को बुलाता हूँ, कहता मुझे फ़लाँ बंदे से मोहब्बत है, तुम भी मोहब्बत करो। फिर जिब्राइल मोहब्बत करते हैं, फिर साथ में आसमान पर ऐलान करते हैं कि अल्लाह को फ़लाँ बंदे से मोहब्बत है, तुम भी करो। 6ठे आसमान पर ऐलान, 5वें पर, 4थे पर, वह ऐलान होते होते नीचे पहुंचता है, हत्ता के ज़मीन वाले भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। देखिए दुनिया में उसके असरात आज भी हैं। जिस शख्स के बारे में मालूम होता है कि वो इशराक, चाश, अवाबीन, तहज्जुद का एहतमाम करता है, लोग उसको नेक समझते हैं। ये नेकी ऊपर से उतरी है, उस आदमी से जो मोहब्बत पैदा हुई, ये उसी ऊपर की वजह से मोहब्बत पैदा हुई है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, सच्चा पक्का नमाजी बनाए, न सिर्फ चलता नमाजी के पहले नंबर का आदमी नमाजी, 5-4 फर्ज पढ़ी और छुट्टी कर ली, न पहले की सुन्नत न बाद की सुन्नत, अल्लाह ऐसा नमाजी नहीं बल्कि आला नमाजी बनाए, सुन्नतों का एहतमाम करने वाला, नवाफिल का एहतमाम करने वाला। फिर आला नमाजी वो होता है जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, कायनात का हर हर फर्द उससे फिर मोहब्बत करता है। सुम्मा युदअउ लहुल क़बूल फिल अर्ज़, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ज़मीन में उस शख्स के लिए कबूलियत रख देते हैं। अल्लाह उन बंदों में हमें शामिल फरमाए जिनके लिए कबूलियत फिल अर्ज़ रख दी गई। बहरहाल ये मुख्तसर बात करनी है, उसके बाद एक बात ये बतानी है कि जो हालात चल रहे हैं लॉकडाउन के आप सब जानते हैं, इसमें कुछ उसूली बातें कानूनी तौर पर हुकूमत की तरफ से मुकर्रर हैं, तो बाल उसका एहतमाम किया और कराया जाता है, और चूंकि उनकी नज़र कड़ी रहती है इस पर कि भाई मसाजिद में क्या हो रहा है, आया इन कवानीन की पाबंदी होती है या नहीं होती है, इसलिए हम भी और हर इमाम भी एहतमाम से ऐलान करता है कि भाई ये मास्क जो है इसको इस्तेमाल क्या करो, इसको पहना करो। और क्या कहूँ, एक गोया बहाना है कि बीमारी ना आवे, वबा ना पैदा हो, बीमार आदमी ना बने, उसके लिए इलाज है। लेकिन बाद बंदे ऐसे होते हैं जो मेरी तरह आज़ाद होते हैं, मैं भी आज़ाद हूँ, और कुछ लोग वाकई आज़ाद हैं, कहने को भी आज़ाद हैं, वैसे भी आज़ाद हैं, वो कहते हैं हम तो नहीं पहन कर आएंगे। तो भाई कोई अगर ऐसा ही आज़ाद हो मेरी तरह तो ठीक है, लेकिन जब मस्जिद में आए तो थोड़ा बहुत इस कानून का लिहाज कर लेना अच्छी बात है, और जगहों पर जाए तो आज़ादी के साथ रहे, कोई मसला नहीं है। बात यह है कि बाद मरतबा इसकी निगरानी होती है, लोग देखते हैं कि भाई फलां मस्जिद में क्या हो रहा है, फलां मस्जिद में क्या हो रहा है। अब ऐसा एक दो आदमी अगर मालूम हो जाते हैं तो फिर मस्जिद पर हर्फ आता है कि भाई देखो फलां मस्जिद में ये हो रहा है, इसलिए मैं इस बात की ताकीद करता हूँ। और बाकी एक बात और भी कहता हूँ, कोई अगर बंदा इस तरह का आ जाए तो दूसरे लोग इतना बुरा भी ना माने कि भाई उसको मस्जिद से निकाल दो, ये कर दो। ऐलान हर एक के लिए हो रहा है, हर आदमी को एहतमाम करना चाहिए, अपने तौर पर हर आदमी एहतमाम करके आए। लेकिन अगर कोई बंदा बग़ैर उसके आ जाता हो तो फिर मेरी राय यह है कि इसमें इतनी सख्ती भी ना की जाए। ये कोई कुरान का हुक्म नहीं है, कोई वही नहीं है जो आसमान से उतर कर आए हो कि नहीं ये फ़र्ज़ है और अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो हलाक हो जाओगे, और इस्तेमाल कर लोगे तो बच जाओगे। इसका उल्टा भी हो सकता है कि जितने मास्क पहनने वाले हैं ये सब हलाक कर दिए जाएं और जो बगैर मास्क हैं वो जिंदा रह जाएं, इसका पूरा इम्कान है। खैर, तो मस्जिद के एतबार से बाल में आप हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर पहन कर आएँ, लेकिन कोई अगर ना आए तो उसको झगड़े की जगह ना बनाए, उससे नरमी से समझा दें आपने अपना फर्ज अदा कर दिया। फिर अगर कोई आदमी नहीं आ रहा पहन कर और उसकी वजह से मस्जिद को नुकसान होगा तो वो ज़िम्मेदार होगा। अल्लाह ताला हम सब को दीन की बातों पर, वक्त के तकाज़ों पर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जहाँ तक एहतियात की बात है, एहतियात बता रहे हैं, अल्लाह करे इसमें एहतियात हो तो अच्छी बात है, मगर हम भी इसको इतना फर्ज नहीं कहते हैं। जो बात साफ है वो हर्ज कर दी है कि कोई कानून शरई नहीं है, लेकिन अपनी एहतियात इसी में है, जैसा कि बतला रहे हैं बता रहे हैं, तो भाई थोड़ी बहुत एहतियात कर ली जाए। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह।